त्रिमुहा है उत्तम माध्यम जगन त्रिविधि के अंतरे आत्म ज्ञानी दिव्य सांग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रती अनगारी जगन कहे अभिरत समृष्टि तीनों शिव मगचारी सकल निकल पर मातम देवी इनमें भाति निगारी श्री हर हंस सकल पर मातम लोकालोक निहारी ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म मल वर्जित सिंध महंता ते हैं निकल अमल पर मातम भोगे शर्म अनंता बहिरासन साहे ज्ञान सजी अंतर आत्म हुजे परमात्म को जाए निरंतर जो नित आनंद पूज चेतन का बिन सो अजीव है पंच भेद ताके हैं उद्गल पंच वरन रस गंध दो परत वसु जाके हैं ये उद्गल को चलन सहाई ब्रह्म ब्रह्म अनरूपी तिष्ठत होई अधर्म सहाई जिन बिन्द मूर्ति निरूपी सकल ब्रह्म को वास जास में सो आकाश पिछानो नियत वर्तना निश दिन सो वर हर काल परिमानो यो अजीव अब आशव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या विरति अरुपशाय पर माद सहित उपयोगा यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तरिये जीव प्रदेश बंदे विदिशा बंधन कब होना सरिये शमदम से जो कर्म न आवे तो संबर आदरी सपवल तेरी झरन निर्जरा ताही सदा आचरिये सकल कर्म से रहित अवस्था सुशिव थिर सुखकारी ये विधि जो सर धाता की सुसमकित व्यवहारी देव दिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया युत सारो ये मान समकित को कारण अष्टांग युत धार।
देखिए आपका दसवें छंद तक जैसे सोमिल भाई ने मुझे बताया आपका दसवें छंद तक का विषय हो गया है। ठीक है, वास्तव में छैडाला की जो तीसरी ढाल अभी आपके चल रही है आपने जो दसवें श्लोक तक देखा उसको अगर हम बेसिक प्रारूप में देखें तो सबसे पहले उसमें बताया जो आप तीसरी ढाल का पहला छंद देखिए आत्म को हित है सुख सो सुख आतुलता बिन कहिए। मतलब पहली ढाल में चारों गतियों का दुख बताया, उसके बाद की जो दूसरी ढाल है उसमें चारों गतियों के दुख का कारण बताया, अब तीसरे ढाल में जो हमको चारों गति के दुख हैं उनसे दूर होने का क्या उपाय है वो उपाय यहाँ पे चालू किया। तो उस उपाय में सबसे पहले जीव के दो भेद बताए। जीव के दो भेद तो हम सभी को पता ही है कौन कौन से हैं। जीव है, जीव के दो भेद कौन कौन से हैं? एक संसारी है और दूसरा मुक्त है, बराबर है ना। जीव के दो भेद हैं, एक संसारी है और दूसरा मुक्त है। फिर संसारी आत्मा में उन्होंने तीन भेद किए जो आपके एक एक छंद में आया ना उसी छंद के हिसाब से मैं आपको बता रहा कि जो तीन भेद किए उसमें पहला है बहिरात्मा, दूसरा है अंतरात्मा और तीसरा है परमात्मा, बराबर है। फिर इस परमात्मा में दो भेद किए, एक सकल परमात्मा
और एक निकल परमात्मा।
ये जो आत्मा के तीन भेद किए, उस आत्मा में पहला बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो जीव बाहर की चीजों को अपना मानता है, मतलब जो वास्तव में मेरी नहीं है लेकिन अपने से भिन्न जो बाहर की चीजें हैं उन चीजों को जो अपना मानता है उसका नाम है बहिरात्मा। फिर अंतरात्मा किसे कहते हैं? कि ये बाहर की चीजों को अपना तो नहीं मानता है, अपनी आत्मा को ही अपना मानता है, लेकिन जितना इसमें मतलब श्रद्धान अभी इसका पक्का नहीं हुआ है, तो श्रद्धान की अपेक्षा से फिर इसको तीन भागों में बांटा। कैसे बांटा? उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। यह है ना सातवें आठवें के अंदर, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। तो उत्तम अंतरात्मा कौन है? जो आठवें गुण स्थान से लेकर बारहवें गुण स्थान तक बढ़ती जो जीव है, जो साधक है, जो जान भी रहा है, अनुभव भी कर रहा है, वो उत्तम अंतरात्मा है, बराबर है। उसके बाद में मध्यम अंतरात्मा, जो फिफ्थ, जो पांचवा अनुगति शावक है, उसके बाद छठा गुण स्थान वर्ती, तो पांचवा छठा गुण स्थान वर्ती जो शावक है वो यहाँ पे आता है मध्यम अंतरात्मा में। और उसके बाद में ये जो जगन्य अंतरात्मा का जो श्रेणी आती है, जगन्य अंतरात्मा के अंदर चौथे गुण स्थान वर्ती जो जीव है, चौथे गुण स्थान वर्ती जीव मतलब सम्यक के संदुक वाला जो जीव है, ये तीनों ही जीव मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। कि ये उत्तम, मध्यम, जगन्य तीनों मोक्ष मार्गी जीव है, लेकिन उनके श्रद्धान की अपेक्षा से यहाँ पे आठवें गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान वर्ती जीव को रखा है उत्तम अंतरात्मा में, छठे सातवें आठवें गुण स्थान वर्ती, छठे पांचवें गुण स्थान वर्ती जीव मध्यम अंतरात्मा में, और चौथे गुण स्थान वर्ती जो जीव है वो जगन्य अंतरात्मा में, बराबर है। उसके बाद ये जो परमात्मा किया, उसके दो भेद किए, सकल और निकल। जो शरीर सहित है वो सकल परमात्मा है, और जो शरीर से रहित है वो निकल परमात्मा है। तो यहाँ तक के सारे जीव आते हैं संसारी जीव के श्रेणी में, चाहे वो सकल परमात्मा है लेकिन उनके शरीर है तो वो सब इसके श्रेणी में आते हैं, और यहाँ जो निकल परमात्मा कहा वो मुख्य जीव की श्रेणी में आते हैं। इस तरह आपका यहाँ तक आठवां नवां संदेश हुआ। फिर उसके बाद में इन्हीं के बाद में सात पत्र का वर्णन किया, बराबर है। इसी के बाद में सात पत्र का सातवें खंड से आपका, देखिए छठे खंड तक ये हुआ अंतरात्मा परमात्मा, सातवें खंड से चालू हुआ आपका सात पत्र। तत्व कितने हैं? सात, बराबर। तो उसके अंदर इन सातों तत्वों का वर्णन उसने किया। अब उन सातों तत्वों के बाद जो दसवां खंड आपका आता है, नवे खंड में क्या बताया कि ये ही आत्म को दुख कारण जो बंध है, जो कर्मों का आश्रय है और कर्मों का बंध बना है, वो कैसा है? आत्मा के दुख का कारण है, मतलब हमको आत्मा को दुख को देने वाले हैं। तो जनरली बात ये है कि ये जो कर्म का आना है, कर्म का जो आश्रय हो रहा है, वो किसके कारण से हो रहा है? हमने पढ़ा ना अभी इसके पहले वाले उसमें, तो कर्म का जो आश्रव हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है? किसके कारण से कर्म आ रहे हैं? जनरल प्रश्न है, कर्म किसके पूर्व में बांधे हुए कर्म, तो किसने बांधे थे कर्म? जीव ने बांधे थे, बराबर है। ये चीज ध्यान में रखना है, कर्म पुद्गल है, बराबर है। कर्म क्या है? पुद्गल है, और मैं कौन हूँ? जीव हूँ। पुद्गल जीव में कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे उदाहरण के रूप में एक महिला है, उसके चार पुत्र हैं, बराबर है। एक महिला के चार पुत्र, वो एक मतलब उनकी उम्र होती जाती है और एक ऐसी अवस्था आती है उस उम्र में, मतलब उनको वो चारों बेटे कहाँ पे ओल्ड होम के अंदर छोड़ देते हैं। अब वो महिला से कोई पूछता है कि आपके कितने बेटे हैं, तो वो बोलती है कि मेरा एक भी बेटा नहीं है। क्यों? बेटे उत्पन्न कहाँ से हुए? उत्पन्न तो उन्हीं महिला से हुए ना, मतलब पुत्र तो उसी के ही है, लेकिन फिर भी वो उसको दुखदायक है। वो कैसे है? वो उसको मारते पीटते हैं या उसको घर से निकाल दिया है, तो वो उसको दुखदायक है। तो ऐसे दुखदायक होने के कारण वो महिला क्या बोलती है कि ये पुत्र मेरे नहीं है। उसी प्रकार ये जो कर्म का आश्रय आदि है, उत्पन्न किसके कारण से है? मेरे कारण से। उत्पन्न का कारण तो मैं हूँ कि मेरे कारण से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन मुझे कैसे है दुख को देने वाले हैं, कि मेरे दुख को उत्पन्न करने वाले होने के कारण से वो वास्तव में जीव के नहीं है। जीव तो उन सबसे भिन्न ही है, बराबर है। उत्पन्न, अगर हम उत्पन्न अपने में से नहीं मानेंगे, सर्वथा अभिन्न मान लेंगे, तो फिर मोक्ष बना ही समाप्त हो जाएगा। बराबर है। अगर कोई ऐसा तर्क करे कि कर्म तो पुद्गल है, पुद्गल और जीव कभी एक में एक नहीं होता है, तो मेरे अंदर कर्म है ही नहीं, अगर हम ऐसा मानेंगे तो हमें मोक्ष जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे में कर्म नहीं है तो मैं तो यहीं पे मोक्ष हो गया ना। सीधी बात है। अगर मैं कर्म की सत्ता को अपना नहीं मानता हूँ तो भी दोषी हूँ, और यदि मैं कर्म की सत्ता को अपना मानता हूँ तो भी दोषी हूँ। पर दोनों जगह दोष है, क्योंकि अगर मैं कर्म की सत्ता को अपने अंदर नहीं मानता हूँ तो मैं सिद्ध पर्याय को नकारता हूँ, और अगर मैं कर्म की सत्ता को सर्वथा अभिन्न मानता हूँ तो भी मैं अपने को सिद्ध के समान, मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध दशा यहीं पे मान लेता हूँ। तो इसके लिए कि कर्म मेरे में है भी और मुझसे भिन्न भी है, मतलब मेरे में है लेकिन मुझसे सर्वथा भिन्न है, मेरा उसमें किंचित मात्र भी कर्तापना होता नहीं है। बराबर है। यहाँ तक की बात, इन सात तत्वों की बात हमने समझी। आठवें नवे छंद में हमने क्या समझा कि एक तत्व सात है, वो सात तत्वों में जो आश्रव बंध है वो दुख के कारण है, और उसका उपाय है संवर निद्रा। तो मुझे इन सातों तत्वों को जानकर अब जो मेन उपाय प्रारंभ हुआ, बराबर नवा छंद देखिए, नवे छंद में क्या लिखा है, ये ही आत्म को दुख कारण ताके इनको सजिए, कि हे जीव, ये ही मतलब क्या, ये जो आश्रव है और जो बंध है, तीसरी डाल का नवा छंद, ये ही आत्म, ये सब आत्मा को दुख को देने वाले हैं, इसके लिए हे जीव इनको सजिए, मतलब तू क्या कर, छोड़। अब ऐसा काम कर, तीसरी लाइन, श्रम दम से जो कर्म न आवे सो संवर आदरिए, कि ऐसा कार्य कर जिससे तेरे साथ में कर्मों का बंधन नहीं हो, कर्मों का बंधन नहीं होगा और तप आदि के द्वारा कर्मों की निर्जरा करेगा तो तुझे मोक्ष होगा। क्योंकि अगर हम संवर निर्जरा को नहीं करेंगे, अगर हम सत्व को नहीं समझेंगे, तो इस जीव का मोक्ष कभी होगा? देखिए, कर्म की जो कर्म सत्ता है उसका क्या है, मैं ये जीव हूँ, बराबर है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कर्म को बांधा, बराबर, यहाँ पे मेरे कर्म आए, कर्म का बंधन हुआ, वो बंधन उदय में आया, बराबर है, उदय में आया तभी मेरे परिणाम बिगड़े, परिणाम बिगड़ने से वापिस कर्म का बंध हुआ, कर्म का बंद होने से वो वापस उदय में आया, उदय में फिर मैंने परिणाम किए, फिर बंद हुआ, फिर उदय आया, फिर बंद हुआ, फिर उदय आया। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल कंटिन्यूसली चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जब जब मेरे उदय आता है तब तब मैं उदय के अनुसार परिणमन कर जाता हूँ। मेरे अगर क्रोध रूपी कर्म उदय में आया तो मैं क्या करता हूँ, मैं और गुस्सा करता हूँ, तो और गुस्सा करने से क्या होगा कि और उस जाति के कर्म मुझे और बनेंगे। तो यहाँ मान लो 5% था तो मैंने और किया तो यहाँ 10% हो गया। तो ये कर्म की जो कंटिन्यूसली श्रृंखला है वो मेरे साथ कभी भी खत्म नहीं होती है। मान लो, देखिए ये बात भी हमेशा ध्यान में रखना है कि कर्म प्रति समय उदय में आ रहे हैं और प्रति समय निर्जरा भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि मात्र उदय में आ रहे हैं, उसके साथ साथ निकल भी रहे हैं। लेकिन कैसे निकल रहे हैं कि मेरे पास मान लो 100 रुपए थे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपीज है, मैं डेली 1 रुपए का एक्सपेंस करता हूँ, मैं डेली 1 रुपए खर्च करता हूँ, लेकिन साथ में मैं 1 रुपए अर्न भी करता हूँ। तो ये 100 कभी खत्म होगा? आपको ये बोलेगा मैं खर्च तो कर रहा हूँ लेकिन उसके सामने एक, कई कई जगह तो अपन 2 भी कर लो, उसके सामने तो अपन सेम या उससे भी ज्यादा बांध रहे ना, तो वो तो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। अगर कम करना है तो ये खर्च जो चल रहा है उसके सामने मुझे इसको पहले 50 पैसा, फिर 25 पैसा करके धीरे धीरे करके इसको पूरा खत्म करना होगा, तब जाके पहले ये कर्म का आश्रय रुकेगा, मतलब नई अर्निंग आनी रुकेगी, तब ये स्टॉक पहले तो होल्ड होगा, स्टॉक होल्ड हुआ उसके बाद इसकी निर्जरा चालू होगी, तब यहाँ पे धीरे धीरे आके लास्ट स्टेज पे 0 आएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये तो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए कर्म हमारे साथ प्रति समय आ रहे हैं, बन रहे हैं, उदय में आ रहे हैं और निर्जरा भी हो रही है, लेकिन जैसे उदय में आता है तो मैं उस उदय के परिणाम के साथ में अपना परिणाम जोड़ करके और ज्यादा कर्म को बांधता हूँ। इसके लिए ये श्रृंखला मेरी कंटिन्यूसली अनादि कब से चल रही है, अनादि काल से, अभी की नहीं है। हमारी जो सत्ता है वो अभी की नहीं है, अनादि काल की सत्ता जो कंटिन्यूसली चलती आ रही है। अगर उसका अंत करना है तो हमको अपने को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें भी सबसे देखिए, हम लोग, मैं कौन हूँ, जीव हूँ, तो हमें हमारी महत्ता तो आनी ही चाहिए कि सबसे पहले मैं जो हूँ। हम बोलते ना कि मुझे इतने सब संयोगों में, सबने तीन लोग का डायग्राम तो सबने ही देखा होगा, बराबर ना, तीन लोग का जो डायग्राम बनता है, ये तीन लोग है, बराबर है। इस तीन लोग में सबसे नीचे क्या है, ये नीचे का अधोलोक है, ये बीच का मध्य लोक है और सबसे ऊपर का ऊर्ध्वलोक है। इतना तो हम सबको पता ही है कि ये सबसे नीचे वाला कौन सा है, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, बराबर है। तो अब ये देखिए कि इतने सारे लोक में अनंतानंत जो जीव राशि भरी पड़ी है, अनंतानंत जीव राशि भरी है, उसमें से अगर मात्र मोक्ष का स्थान है तो कहाँ है, मध्य लोक में। सिद्धशिला तो रहने, मोक्ष के होने के बाद का जो स्थान है वो है, मोक्ष जाने की योग्यता जहाँ रखी जाती है वो मात्र मध्य लोक के भी एक पर्टिकुलर जो 45 लाख योजन का जो एरिया है उसी एरिया में। तो हम लोग कितने पुण्यशाली जीव हैं कि हम इतने बड़े विश्व के अंदर, ये जो 14 राज्य ये जो 343 घन राज्य का ये जो विश्व है, उस विश्व में हमें मध्य लोक में जन्म लेने को मिला। फिर इस मध्य लोक के अंदर भी हमें क्या मिला, ढाई द्वीप में जम्बू द्वीप में भी फिर भरत क्षेत्र मिला, फिर भरत क्षेत्र के अंदर भी हमको चारों गतियों में भी कौन सी गति मिली, मनुष्य गति मिली। मनुष्य गति में भी कौन सा कुल मिला, जैन कुल मिला। जैन कुल के अंदर भी जिनवाणी को सुनने का समझने का सहयोग मिला, जिनवाणी सुनाने वाले लोग मिले और साथ में वो रुचि भी मिली। तो हमारी जैसे होता ना कि IAS RAS की एग्जाम होती है, तो IAS की एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया से कितने लोग बैठते हैं, 10 लाख लोग बैठते हैं। 10 लाख लोगों ने IAS का एग्जाम दिया और IAS की सीट कितनी है, 100 सीटें। एग्जाम कितने ने दिया, 10 लाख में, और यहाँ सीट कितनी है, ओनली 100। तो अगर उस 10 लाख में से जो 100 सेलेक्ट होते हैं तो वो उनको अपनी महत्ता आती है कि नहीं आती, कि मैं इन 10 लाख में सबसे ज्यादा क्या हूँ, माइंडेड हूँ, कि मुझे इतना ज्ञान है कि मैंने इन लोगों को पीछे छोड़कर इस 100 में स्थान बनाया है, बराबर है। फिर इस 100 में से मान लीजिए 100 IAS हुए, या सबसे पहले मैंने 400 सेलेक्ट किए, उन 400 में से इंटरव्यू लिया, उसमें से 100 सेलेक्ट किए, तो मतलब 400 लोग समर्षण तक पहुंच भी गए। उस समर्षण में पहुंचने के बाद जब बिल्कुल भगवान के पास कितने पहुंचेंगे, ये 100। मतलब समर्षण के अंदर जब पहुंचते हैं तो समर्षण में जो बाहर के खोट आती है उसी में रह जाते हैं। मेन जहां दिव्य ध्वनि चल रही है वहां तो बहुत कम लोग ही पहुंचते हैं। फिर उस 100 में से भी और क्लेरिफाई करेंगे तो जैसे मैं जयपुर का हूँ तो बराबर है, जयपुर की IAS की सीट जो खाली थी वो ही मुझे मिल गई, मतलब मुझे तो मेरे घर के पास ही मिल गया। तो ऐसा तो मुश्किल से कोई 5-6 लोग ही होंगे इन 100 में से जिनको उनके घर के पास का ही ब्लैंक पोजिशन मिल जाए। तो वो 5 तो क्या सोचेगा, मतलब उसको तो ऐसी अपनी महिमा आएगी कि मेरे जैसा तो जगत में कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये तो सिर्फ 10 लाख की बात है, हम तो अनंत जीवों को छोड़कर, मतलब इस संपूर्ण जगत की चराचर जीव राशि से हमें अपनी महिमा आनी चाहिए कि मैं कितना, मेरा महान पुण्य का उदय है कि मुझे ऐसे ऐसे संयोग मिले कि जिस संयोगों में अगर मैं अपने स्वरूप का ज्ञान करूं तो मैं भी यहाँ पर कहाँ जा सकता हूँ, सिद्धशिला में, बराबर ना, सिद्धशिला में जा सकता हूँ। सिद्धशिला में जाकर क्या करेंगे, क्या करेंगे सिद्धशिला में जाकर, डांडिया खेलेंगे, देखिए हम लोग बोलते हैं सिद्ध शिला जाना है और ये सब, तो हमें मालूम तो होना चाहिए सिद्ध शिला में जाकर क्या करोगे। किसी ने बोल दिया, जैसे एक कहानी आती है ना कि एक व्यक्ति डेली भगवान के सामने बोलता था, भगवान मोक्ष दिला दो, संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, मोक्ष दिला दो। एक बार भगवान परेशान होगा उससे कि रोज रोज बोलता है मोक्ष दिला दो, मोक्ष दिला दो, मोक्ष दिला दो। भगवान एक बार सामने आ गए और बोला चल मोक्ष में चल, आज मैं तुझे मोक्ष दिलाता हूँ। अब वो तो हिल गया, उसको तो ये धारणा थी ना कि भगवान से बोलो उसको देने वाला तो है नहीं, अपना तो काम है डेली बोलने का भगवान मोक्ष दिला दो, मोक्ष दिला दो। भगवान आ गए अब सामने, भगवान कहते चलो मोक्ष में। अब वो बोलता है कि ऐसा करो थोड़े दिन रुक जाइए, अभी अभी बच्चे की मतलब अभी अभी शादी हुई है, बच्चे हो जाएं, फिर उसके बाद में मोक्ष जाऊंगा, फिर थोड़े दिन बाद फिर भगवान आते हैं। तो ऐसे स्टोरी मतलब कंटिन्यूसली पूरे जीवन की है कि तुम कितना ही कर लो, लेकिन हम खाली बोलने मात्र में बोलते हैं कि मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, लेकिन मोक्ष जाकर क्या करोगे ये तो सोचो कभी। हमें यहाँ क्या दुख है जो हमें मोक्ष जाना है, यहाँ छोड़कर कहीं और जाना है, इसका मतलब ये नक्की है ना कि यहाँ पे सुख नहीं है, तभी तो मोक्ष में जाना है ना, नहीं तो ऐसे ही बस मतलब जैसे कॉलेज से निकले और किसी ने बोला कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हम भी पीछे हो गए, बस हम भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे। कुछ तो हमने कॉलेज का पोर्टफोलियो देखा होगा ना, कुछ तो कि हाँ इस कॉलेज में ये सब चीजें मिलती है, इस कॉलेज में ये एजुकेशन है, इस कॉलेज का प्लेसमेंट इतना हाई है, इसके लिए मैं इस कॉलेज में जाऊँ, बराबर ना। हम कुछ भी करते हैं तो हम पहले उसका पूरा रेक्टिफाई तो करते हैं ना उस चीज को, उसका पूरा क्लेरिफाई करते हैं। तो अब हमने रटन तो लगा ली है, रट्टू तोता की तरह, बस मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। लेकिन जाना क्यों है ये तो बोलिए। आज अगर मोक्ष बटना लग जाए, अगर मोक्ष मिलने की सेल लग जाए तो मोक्ष जाके क्या करोगे। सबसे पहली बात तो अगर सेल लग जाए ना तो जो 100 लोग बोल रहे होंगे ना उसमें से 50 लोग भी नहीं पहुंचेंगे मोक्ष के वहां पे। जनरल प्रश्न है अगर मोक्ष हमें मिले तो हमें मोक्ष क्यों जाना है, वो सबसे पहले हमें निर्णय करना है। मैंने एक पहले की क्लास में भी ये बताया था कि सबसे पहले हमें संसार में दुख है ये नक्की करना पड़ेगा। अगर हमें संसार में दुख ही नहीं लगता है तो हमें मोक्ष जाना ही नहीं है। मोक्ष में क्या है, मोक्ष क्या है सबसे पहले समझिए, मोक्ष क्या है। मोक्ष कोई चीज है, मोक्ष कोई वस्तु है, मोक्ष कोई जगह का नाम है, आखिर मोक्ष है क्या। अवस्था, किसकी अवस्था, अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। तो वो मोक्ष कहाँ है, कहाँ है, अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम है। तो आत्मा क्या यहाँ पर बैठी है, तीन लोग की आत्मा कहाँ है, बराबर है, क्लास चल रही है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी आत्मा अपने अंदर है, बराबर, अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। तो मोक्ष जाना है ये प्रश्न भी गलत है। मोक्ष जाना है क्योंकि मोक्ष जाना क्या है, जाना तो कहीं दूसरी जगह जाना होता है ना। जाना मतलब मुझे नीचे जाना है, मुझे उधर जाना है, मुझे गाँव जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन ऐसी कोई जगह का नाम तो मोक्ष है ही नहीं। मोक्ष कहाँ है, कहाँ है, मेरे अंदर है। तो जाने का तो प्रश्न ही नहीं है, बस मुझे अपने को जानना है। जाना कहीं नहीं है, मतलब वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं तीन लोग में से पहले अधो को पार करूँ, फिर मध्य को पार करूँ, फिर ऊर्ध को पार करूँ, फिर ग्रह रेख अनुदेश अनुत्तरिमान, फिर सर्वान सिद्धि पार करूँ, फिर जाके मैं सिद्धशिला में पहुंचूं। ऐसा कोई रनवे का मैराथन रेस नहीं लगानी है, समझ आ रही है कि ऐसा कोई जाना नहीं है। वो तो एक अवस्था है, इस जीव की जो शुद्ध अवस्था है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित जो शुद्ध अवस्था है, उसी अवस्था का नाम है मोक्ष। तो मोक्ष कोई ऐसा जाने वाली बात नहीं है, हमें तो खाली अपने को जानना है, और जब मैं अपने को जानूंगा तब मेरे को मोक्ष होगा। क्योंकि मोक्ष कोई जगह, कोई पदार्थ, कोई वस्तु का नाम नहीं है, मोक्ष तो इस जीव की शुद्ध अधिकारी अवस्था का नाम है। तो उसी मोक्ष के जो सबसे प्रथम उपाय है, उस उपाय का वर्णन यहाँ पर दसवें छंद के अंदर करते हैं। दसवां भी आपका शायद लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था, एक बार वापस से अपन इसको पढ़ते हैं। फिर इसके आगे चलेंगे। क्या लिखा है? सकल कर्म से रहित अवस्था सो शिव स्थिर सुखकारी, यह विधि जो श्रद्धा तत्व की सो समकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जित सारो, ये मान समकित को कारण अष्ट अंग जित भारो। देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या बताया कि संपूर्ण कर्मों से रहित जो अवस्था है वो ही शिव अर्थात मोक्ष है और सुखकारी अर्थात सुख को देने वाली है। बराबर है। मोक्ष क्यों जाना है? मोक्ष क्यों जाना है? हमने ये देख लिया। देखिए दो चीजें हैं, एक तो है हमारा लक्ष्य है मोक्ष। बराबर है, हमारा ये लक्ष्य है मोक्ष। अब इस मोक्ष के लक्ष्य का दो बात आती है, एक तो है उसका उपाय। यहाँ पे उसका उपाय जो है उस उपाय में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले बताया सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यहाँ से मोक्ष का उपाय प्रारंभ हुआ कि मोक्ष का उपाय जो है आत्मानुभूति, वो आत्मानुभूति सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये जो आत्मानुभूति रूपी मोक्ष का उपाय है वो इसके द्वारा होता है। तो ये तो हो गया मोक्ष और ये उसका उपाय, ये हो गया कार्य और ये कार्य का उपाय, मतलब कार्य को करने का ये कारण हो गया। बराबर है। अब इस मोक्ष को क्यों प्राप्त करना है, ये उपाय तो हो गया, मोक्ष का उपाय तो हमको पता पड़ गया, लेकिन इसका कारण क्या है? ये तो मोक्ष का उपाय है। बराबर है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने का उपाय क्या है कि मुझे MBBS की स्टडी करनी है, मुझे मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस करना है, मुझे डॉक्टरी की स्टडी करनी है। इसको करूंगा तो मैं ये बनूंगा, लेकिन मुझे क्यों करनी है, मुझे डॉक्टर की पढ़ाई क्यों करनी है, वो मुझे ही पता है क्यों करनी है। कि डॉक्टर से आजकल सब MBA इंजीनियर सब हर गली गली में है, डॉक्टर का प्रोफेशन सबसे अच्छा है, डॉक्टर की इनकम अच्छी है, डॉक्टर मैं अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं अच्छी रिच लाइफ जी सकता हूँ, मेरे आगे तक की मेरी पीढ़ी मतलब सब कुछ अच्छा होगा, ये मेरा कारण है बड़े बड़े डॉक्टर बनने का। तो वैसे ही मोक्ष जाना है तो मोक्ष जाने का कारण क्या है? सुखी होना। बराबर, बिल्कुल सही। मोक्ष जाने का कारण क्या है कि मुझे सुखी होना है। बराबर है। इसका मतलब है कि मोक्ष में सुख है, सीधी बात है। अगर मुझे सुखी होने का कारण यहाँ पे मैंने डिसाइड किया तो इसका मतलब है कि मोक्ष में सुख है, तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। बराबर है। अब वो सुख कैसा है? सुख तो मुझे यहाँ भी मिल रहा है, मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, मैं रसगुल्ला खाता हूँ तो मुझे सुख मिलता है। बराबर है। मैं घर गर्मी में से घर में घुसा, AC चालू किया, ठंडी हवा लगी तो मुझे सुख मिला, मेरा मनपसंद खाना मिला, पिज्जा बर्गर मिला, मुझे सुख मिला। तो सुख तो मुझे यहाँ भी मिल रहा है, फिर
ये पानी के वो
हाँ देखिए ये सुख क्या है? क्षणिक है और ये परमानेंट सुख है। बराबर है। और सोचिए
ये एक्चुअल सुख नहीं है, लाइक हम लोग ऐसी बैठे हम लोग उसको सुख मानते हैं, हम लोग का ये गलत,
ये वास्तव में सुखाभास है और ये सच्चा सुख है। बराबर है। और ये जैसे ये तो बोल दिया क्षणिक है, उसी में एक और चीज, ये टूट सकता है, ये टूटता नहीं है, पूर्ण है, तो ये टूट सकता है बीच बीच में। आपके मन में 5 रसगुल्ले खाने की इच्छा थी, आपने एक खाया, किसी ने कटोरा हटा लिया तो वो सुख चला गया, वो सुख उल्टा दुख रूप में परिवर्तित हो गया। या फिर और कह सकते हैं ये आकुलता पैदा करता है और ये अनाकुलता लाता है। कैसे?
उसी एग्जाम्पल पे आ गए, मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता था, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, पांच खाया, छह खाया, सात खाया, अब सात आठ के बाद जो सुख क्या करने लग जाता है, आकुलता पैदा करने लग जाता है कि आठ नौ खाओगे तो आपको जो भी होगा पेट में, फिर ज्यादा होगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो जिसको हम सुख माना था वो सुख कैसा हुआ? आकुलता पैदा करने वाला सुख हुआ। तो सबसे पहले हमें सुख का क्राइटेरिया नक्की करना पड़ेगा कि सुख किसे कहते हैं, बराबर है। तो सुख की डेफिनेशन क्या है कि जो सबसे पहला पूर्ण हो, बराबर है, जो पूर्ण हो, जो अनाकुलता से सहित हो और जो किसी के द्वारा बाधा नहीं जाता है, जो कभी रुकता नहीं है, जो अनंत काल तक रहे, ऐसा परिपूर्ण सुख, वास्तविक सुख कहाँ पर है? मोक्ष में है। और मुझे उस सुख की प्राप्ति करनी है, इसके लिए मुझे मोक्ष में जाना है, बराबर ना। बाहर के जितने भी सुख है वो कैसे हैं? कोई थोड़े समय तक रहेगा, थोड़े समय बाद समाप्त हो जाएगा। कोई सुख अभी सुख लग रहा है, वही थोड़े समय बाद दुख रूप लग जाएगा। जैसे अभी मुझे क्या लग रहा था कि कल तक मुझे एसी अच्छा लग रहा है या फैन है, मैंने पांच में फैन चला रखा फुल पे, बराबर है, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी एक बारिश गिर गई और बारिश से क्या हुआ, ठंडी चालू हो गई। अब वो पांच पे चलने वाला फैन ही मुझे दुख रूप लगने लगता है कि ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। मैं उस पांच को, चार, तीन, ऐसा उसी को एक बंद कर देता हूँ। तो ये बाहर का जितना भी सुख है वो एक तो क्षणिक है, वो सुख कब दुख रूप में परिवर्तित हो जाएगा इसका भरोसा नहीं, और वो सुख किसी से छीना भी जा सकता है, बराबर। पैसा किसी ने छीन लिया, मेरी पोजीशन किसी ने छीन ली, मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो ये सब जो सुख है वो मात्र सुखाभास भी नहीं है, लेकिन हमने उनको सुखाभास रूप मान रखा है। तो इसके लिए मुझे इन सब से रहित जो वास्तविक सुख है, जो मोक्ष में सुख है, उस मोक्ष के सुख को मुझे प्राप्त करना है, इसके लिए मुझे ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसकी प्राप्ति करनी है, बराबर है। ये हमारा विषय जो सम्यक दर्शन का चालू होगा उसकी मात्र भूमिका है कि हमें ये जो सबसे पहला भी दसवें छंद में आया ना, कि इसके लिए ये जितनी भी बातें बताएं ये सब आत्मा को दुख रूप है, तो इन सभी कर्मों से रहित अवस्था जो मोक्ष है वो ही इस जीव को सुखकारी है। इसके लिए है जीव तू इसको ही, मोक्ष को ही जान। और उसमें भी फिर दो बातें बताई हैं। सबसे पहली बात तो है सात तत्वों की अपनी आत्मा की श्रद्धा, और उसके बाद में है देव शास्त्र गुरु, है दो कारण बताए, मोक्ष के दो उपाय बताए। उसमें पहला उपाय तो बताया आत्मानुभूति, बराबर है, और उसके साथ में बताया, पहला तो हो गया आत्मानुभूति, उसके साथ में दूसरा क्या हुआ, देव शास्त्र गुरु। ये मोक्ष मार्ग के दो, वास्तव में तो मोक्ष तो एक ही है, मार्ग भी एक ही है, लेकिन जब तक मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं, मैं आत्मा को कैसे जानूंगा? इन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही मैं आत्मा को जानूंगा। तो इसके लिए देव मतलब सर्वप्रथम शरण तो अपनी आत्मा ही है। अगर अपनी आत्मा में शरण मतलब अपनी आत्मा में ध्यान नहीं टिक रहा है तो उसके लिए ये देव शास्त्र गुरु एक सेकेंड शरण है, लेकिन यहाँ पे सच्चे देव शास्त्र गुरु। इन सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा इस जगत में कोई भी चीज मुझे शरण नहीं है। मुझे शरण है तो एकमात्र मेरी आत्मा, और उस आत्मा को बताने वाले सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। उन सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा इस संसार में मुझे कोई भी शरण नहीं है। तो अब उसमें चाहे कोई भी हो, कोई भी देव हो, कोई भी जाति का देव हो, कैसा भी हो, क्यों है? देखिए, चलिए प्रारंभ करने से पहले एक और छोटी बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम जैन दर्शन की ये जो सिद्धांत अगर आप समझे, जैन दर्शन में कोई व्यक्तिवाद को मुख्य नहीं किया है, वहाँ पे मात्र गुणों की मुख्यता की है। अगर आप जैसे सबने पढ़ा होगा ना, भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है उसे भगवान कहते हैं।
वहाँ किसी व्यक्ति को नहीं बताया कि ये भगवान है ये भगवान है, वहाँ तो मात्र गुण बता दिए कि जिस व्यक्ति के अंदर ये तीन गुण बैठेंगे वो हमारे लिए भगवान है। अब चाहे तुम उस भगवान को बुद्ध कहो, वीर कहो, ब्रह्मा कहो, शिव कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हो, बस उसमें ये तीन गुण 100% रूप से फिट होने चाहिए। कौन से तीन गुण? वितरागता, सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना। इन तीन गुणों का भी क्रम है, ये गुण आगे पीछे भी नहीं होते हैं कभी। सबसे पहले जीव वितरागी होगा, उसके बाद ही उसके सर्वज्ञपना होगा। क्योंकि अगर पहले सर्वज्ञ हो जाए और वितरागता नहीं हो तो वो सब कुछ चेंज कर सकते, बराबर ना। अगर मेरे अंदर वितरागता नहीं आई और मुझे मालूम पड़ गया कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, कल ये मेरे साथ ये करने वाला है, ये बाहर मेरी बढ़ाई करता है, अंदर में मेरी बुराई करता है, इसके मुझे तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। जनरल वृत्ति है ना, अगर मुझे पता पड़ गया तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या आएगा? वितरागपना आएगा, उसके बाद जीव का सर्वज्ञपना होता है और उसके बाद हितोपदेशीपना होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर सर्वज्ञता नहीं हो और हितोपदेशीपना हो तो वहाँ का ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सर्वज्ञ है नहीं, सब कुछ को जाना नहीं है और उपदेश देना चालू कर दिया तो उनके ज्ञान में पूर्ण बात कभी नहीं आएगी। इसके लिए ये क्रम भी हमेशा ध्यान में रखना है कि जो वितरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, वही सच्चे देव है। अब उन देवों को आप किसी भी नाम से कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नमो कार्बन नहीं कहा ना, कोई नाम नहीं कहा, मात्र अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ऐसा एक क्राइटेरिया बता दिया कि उनको मेरा नमस्कार है। तो ऐसे सच्चे देव, फिर उन सच्चे देवों के द्वारा जो बताई गई, कही गई जो वाणी है, जो जिनवाणी है वो जिनवाणी, और उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले जो गुरु है, नगन दिगंबर मुनिराज है, ऐसे सच्चे गुरु ही वास्तव में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की श्रेणी में आते हैं। पूज्यता की दृष्टि से तो एकमात्र यही सच्चे देव शास्त्र गुरु पूजने योग्य है, उसके अलावा कोई भी देव, कोई भी शास्त्र, कोई भी गुरु पूजने योग्य नहीं है। एक लौकिक विनय और एक विद्या विनय एक अलग चीज होती है कि जो हमारे विद्या के गुरु हैं या जिन्होंने हमें इस काल के अंदर ये सब मार्ग समझाया तो वो एक हमारे उपकारी गुरु है। लेकिन जहाँ पे पूज्यता की बात आती है, जहाँ पे जैन दर्शन की बात आती है, वहाँ पे मात्र जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु है वो ही एकमात्र पूजने योग्य है, उनके अलावा कोई पूजने योग्य नहीं है। तो उसी देव शास्त्र गुरु और अपनी आत्मा की यहाँ पे बात बताई कि ये हूँ मान समकित को कारण अष्ट अंगजित धारो, दसवें छंद की अंतिम लाइन, कि ये जो आत्मा सात तत्व की सच्ची श्रद्धा और उसके बाद जो देव शास्त्र गुरु बताए ये ही वास्तव में सम्यक के कारण है। इसका अन्वयार्थ देखते हैं, नीचे जो हिंदी में अन्वयार्थ लिखा ना उसमें, समस्त कर्मों से रहित स्थिर अटल अनंत सुखदायक दशा पर्याय तो मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार जो सात तत्वों के भेद सहित श्रद्धा करना सो व्यवहार से सम्यक दर्शन है। वितराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी सच्चे देव, 24 परिग्रह से रहित वितरागी गुरु, सारभूत अहिंसा में जैन धर्म, इन सबको सम्यक दर्शन का निमित्त कारण मानना चाहिए। सम्यक दर्शन को उसके 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए। कि वास्तव में क्या लिखा है? व्यवहार कारण, दो कारण, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय कारण तो क्या हो गई? निश्चय कारण क्या हुआ? अपनी आत्मा। निश्चय कारण हुई अपनी आत्मा और व्यवहार कारण में हुए देव शास्त्र गुरु सात तत्वों की सच्ची श्रद्धा, ये हुआ व्यवहार कारण में। तो ऐसे इन सबको सम्यक दर्शन का निमित्त कारण मानना चाहिए। अब सम्यक दर्शन को उसके 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए। तो सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। उन 8 अंगों का अगले जो श्लोक है उसके अंदर वर्णन आएगा। एक बार भावार्थ पढ़ते हैं। मोक्ष का स्वरूप जानकर उसे अपना परम हित मानना चाहिए कि सबसे पहले तो मोक्ष का स्वरूप जानिए कि वो मोक्ष कैसा है, मोक्ष में क्या है, उसको जानकर वो कैसा है, मेरा हित रूप है ऐसा मानना। फिर आठ कर्मों के सर्वथा नाश पूर्वक आत्मा की जो संपूर्ण शुद्ध दशा प्रकट होती है उसे मोक्ष कहते हैं। आया ना कि मोक्ष कोई जगह अवस्था का नाम नहीं है, मोक्ष तो आठ कर्मों के नाश पूर्वक अपनी आत्मा की जो संपूर्ण शुद्ध दशा प्रकट होती है उसी का नाम मोक्ष है। वह दशा अविनाशी मतलब कभी भी नाश नहीं होने वाली तथा अनंत सुखमय है, मतलब वहाँ पे अनंत सुख का भंडार है। इस प्रकार सामान्य और विशेष रूप से सात तत्वों की अचल श्रद्धा करना उसे व्यवहार सम्यक कहते हैं। मतलब सात तत्व जो इसके पहले जो छंदों में सातवें आठवें नवें छंद में जो सात तत्व बताए उन सात तत्वों की अचल, अचल मतलब पक्की, चल मतलब चलने वाला, अचल मतलब पक्का रुका हुआ, कि ऐसी श्रद्धा जिस श्रद्धा को कोई हिला नहीं सके ऐसी अचल श्रद्धा करना उसे व्यवहार सम्यक कहते हैं। फिर जिनेन्द्र देव वीतरागी गुरु तथा जिनेन्द्र प्रणीत अहिंसा में धर्म भी उस व्यवहार सम्यक दर्शन के कारण है, तथा इन तीनों का यथार्थ संधान भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। अब वो सम्यक दर्शन निम्न उक्त आठ अंगों सहित धारण करना चाहिए। व्यवहार सम्यक का स्वरूप पहले दूसरे तथा तीसरे छंद के भावार्थ में समझाया है। निश्चय सम्यक के बिना मात्र व्यवहार को व्यवहार सम्यक नहीं कहा जा सकता। अभी अंतिम लाइन ध्यान की है कि निश्चय सम्यक के बिना मात्र व्यवहार सम्यक को वास्तविक सम्यक नहीं कहा जा सकता। कि सम्यक दृष्टि आप कहें कि देव शास्त्र गुरु का अनुसरण ही सम्यक है तो वो व्यवहार सम्यक के कारण तो है, लेकिन व्यवहार भी कब व्यवहार कहलाता है, जब निश्चय के पूरक वो व्यवहार होता है, कि निश्चय के साथ वाला व्यवहार ही वास्तव में व्यवहार कहलाता है। तो निश्चय से जो सम्यक दर्शन है उस सम्यक दर्शन के साथ का ये जो सम्यक दर्शन है बाहर का वो वास्तविक सम्यक कहलाता है। तो आज हमने उसकी भूमिका बांधी है, इसकी भूमिका में सम्यक का जो वास्तविक स्वरूप है उसको हमने थोड़ा समझा है। अगली क्लास में, अगली दो क्लासे भी मेरी ही हैं, तो अगली क्लास में हम ये कोशिश करेंगे कि ये सम्यक दर्शन का जो ये प्रकरण है उस सम्यक दर्शन के प्रकरण को ये जो आठ अंग और 25 दोष वाला जो प्रकरण है उसको हम अगली क्लासों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। किसी को कुछ अगर शंका हो तो वो उसमें पूछ भी सकता है, बराबर है। कोशिश करिएगा कि छेड़ाला एक ऐसी पुस्तक है जो हमको अगर जनरल में याद भी रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना हो सके एक एक ढाल से प्रारंभ करिए, पहली ढाल लर्न करने की कोशिश करिए, दूसरी ढाल करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना चाहे एक एक छंद भी हम धीरे धीरे भी याद करें ना तो ये एक ऐसी पुस्तक है कि हमें जनरल वे में भी बहुत काम में आने वाली है। तो इस प्रकार आज हमने सम्यक का और सम्यक की पूर्व भूमिका कि जो मोक्ष जाने का जो उपाय बताया है वो उपाय किस तरह से कार्य करता है उसको हमने थोड़ा समझा है, उसका विस्तार हम अगली कक्षा में करेंगे। संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति करते हैं। मेनली तो यहीं पे काम में आती है ना।
नहीं
ऊपर नहीं खा
रहे
नीचे दिलीप भाई कैसे बोल
અને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ. થોડા ક્ષણ સમજાયું?